这母亲年纪这么大，咱们儿子往出儿子，我没说错呗？
我的阿爹呀，这是我们的，昨天晚上十点钟。बोले एक बार ही वो क्या हमारा दर्शन करने के लिए कभी आएगा क्या? परंतु उद्धव जब कुछ बोल नहीं सके, अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, श्री नंद बाबा पूछ रहे हैं कि हमें तो ये बता कि कन्हैया कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, सात दिन में आएगा, महीने में आएगा, नहीं आएगा? एक बार आकर के जरा हमको संभाल तो ले। उसके मुख का स्मरण करते हम सबकी अत्यंत अत्यंत दशा व्याकुल दशा हो रही है। श्री बाबा कहने लगे, बोले जैसे ये कहे कि हम उसका ध्यान करें तो ध्यान करने से हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। जब हम उसका ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि हसतम भासतम चांद सर्वान शुक्ला क्रिया, उसका स्मरण करने से हमारे दुख का संताप का नाश नहीं होता है, बल्कि उसका स्मरण करने से हमारे शरीर में उल्टी और विकलता की ही प्राप्ति हो जाती है। उद्धव जी ने बाबा से कहा, बोले बाबा यदि तुम्हारा कभी घर में मन न लगे, व्याकुलता हो रही हो, तो जरा बाहर घूम फिर आया करो, गैया चराने के लिए चले जाया करो। ब्रजराज पहले भी गैया चराने जाते ही थे, कन्हैया जब गोचरण करने नहीं जा रहे हैं उसके पहले तो श्री ब्रजराज ही गैया चराने के लिए जाते थे। तो बोले बाबा आपका तो सारा ब्रज देखा हुआ है, आप ही जरा सा गोपराज होकर के जैसे पहले जाते थे ऐसे अब गैया चराने के लिए चले जाया करो। अरे गैया भी ये चराने के लिए तो बहुत से गोप है, ठीक है जरा सा वन में यमुना जी के किनारे विचरण कर आओगे तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा, मन बहल जाएगा। बाबा व्याकुल होकर के कहने लगे कि सर शैल वनोपदेशान मुकुंद पदभूषितान आक्रीडान इक्षमाणानाम मनोयात तदात्मताम। बोले उधो क्या बात कह रहा है, तो भी कर चुके। जब हम यमुना के किनारे पहुंचते हैं, यमुना के किनारे पहुंचने पर हमको और ज्यादा व्याकुलता की प्राप्ति हो जाती है। पर यमुना की शोभा का दर्शन करके कन्हैया की याद और ज्यादा बढ़ जाती है, जरा घटता नहीं है, जरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जब गोवर्धन का दर्शन करते हैं शैल का, उस समय कन्हैया ने हमारा कैसे पालन किया था, यह विचार करके हमारी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ जाया करती है, वो घटती नहीं। मुकुंद पद भूषितान वन का दर्शन करके, यहां पर उन्होंने गैयाओं की दावानल से रक्षा की थी, इतनी इतनी लीलाएं की, अनेक अनेक असुरों को मारा, यहां पर विचित्र विचित्र लीलाएं हुई हैं, उनका दर्शन करके हमारा और स्नेह बढ़ जाता है, विरह बढ़ जाता है। इसलिए हम कैसे जाएं, मनोरंजन के लिए जाते हैं पर मनोरंजन के लिए जाने पर भी व्याकुलता बढ़ जाती है। आज हम कहां तक कन्हैया ने हमारी संरक्षा की, इस बात को गिनाएं। ऐसा कहते कहते ही बाबा के हृदय में कहीं ऐश्वर्य का विवेक उत्पन्न हुआ है और ऐश्वर्य विवेक को धारण करके कहने लगे कि मन ये कृष्णम च रामम च प्राप्तौ इह सर्वोत्तम। बोले उधो हमको तो ये लगता है कि राम कृष्ण ये दोनों हमारे यहां पर ईश्वर ही आया, कोई देवता ने ही हमारे यहां पर अवतार धारण किया है। ये बात बाबा का सिद्धांत नहीं है, विकलता में बाबा के मुख से निकले हुए ये वचन है। मन ने यहां पर मन ने शब्द का प्रयोग है, बाबा तो कृष्ण को अपना पुत्र ही करके मानते हैं, परंतु कृष्ण के गुणों का स्मरण करते करते कहीं ऐश्वर्य विवेक के का भी उदय हो आया और ऐश्वर्य का दर्शन करके उस ऐश्वर्य में कृष्ण की ईश्वरता का कहीं दर्शन कर लिया। ऐश्वर्य जो है, वैभव जो है, उसमें कृष्ण की ईश्वरता का बाबा कहीं विचार करने लगे کہ گرگا آچاریہ جی کہہ گئے تھے کہ بابا تسما نندناتم جو ہم تھے نارائن سموگڑ، تیرا جو بیٹا ہے وہ نارائن کے سمان دے والا ہے. آہا گرگا آچاریہ جی کے ان بچنوں کو ہم نے سچے ہوتے ہوئے دیکھا، نارائن میں جو گن ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے گن میرے بیٹا میں ودیمان تھے. نارائن کی جیسے سب دیوتا اپاسنا کرتے ہیں ایسے میں نے اپنے بیٹا کی اپاسنا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس سمے بڑو دیوتا مجھے پکڑ کر کے لے گئے، کنہیا پیچھے پیچھے دوڑا اور جو بڑو دیوتا کے لوک میں پہنچا، بڑو دیوتا دوار سے کرشن کو پدھرا کر کے سواگت کرتے ہوئے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کرشن ہے پرماتما، میرے اپرادھ کو آپ کھما کریں گے، یہ رہے آپ کے پتا، میرے اجانی سیوکوں کے دوارا آپ کے پتا کا ہرن کر لیا گیا ہے، میرے اس اپرادھ کو آپ کھما کریں گے. برن دیوتا نے میرے بیٹا کو میری آنکھوں کے سامنے اونچے سنگھاسن کے اوپر براجمان کر کے ان کا پوجن کیا اور یہ کہا کہ کرشن ساکشات پربرہم ہے، پرماتما نے کرشنا ہے پرماتما نے کہہ کر کے، آپ پرماتما ہو یہ کہہ کر کے میرے سامنے پوجن کیا تھا. جیسے نارائن کی پوجا کی جاتی ہے ایسے میرے بیٹا کی پوجا کی جاتی تھی. پر اس کا تاثر یہ نہیں ہے کہ بابا اپنے پتر کو نارائن سمجھتے ہیں، یہ تاثر کا بات نہیں، یہ بھاؤ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی پتا اپنے پتر کو چکرورتی راجیہ کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھے، سنگھاسن کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھے، اس کے ہرے میں یہ وچار آتا ہے کہ آہا میرا بیٹا اتنا اونچا، اس کے ویبھو کا درشن کر کے جیسے اس کے پتا کے ہرے میں یہ بھاؤ اتپن نہیں ہوتا ہے کہ یہ راجا ہے، بلکہ یہ بھاؤ اتپن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اتنے اونچے پد پر براجمان ہے. وہ اپنے باتسلیہ کو اس کی بھاونا سے ہی اپنے پتر کا جیسے درشن کرتا ہے، ایسے کرشن کو ایشور روپ میں پوجت ہوتے ہوئے دیکھ کر کے بھی شری برجراج کو اپور روپ سے آنند کی پراپتی ہو رہی ہے، اپنے باتسلیہ کا ہی پوشن نند بابا کے دوارا ہو رہا ہے. کرشن کے پرتی کوئی آدر کی بھاونا اتپن ہو گئی ہو تو بات نہیں ہے، کرشن کے پرتی کوئی اپنے ہرے میں داسیہ بھاونا اتپن ہو گئی ہو تو بات نہیں ہے، سوئم گورو کی بھاونا اتپن ہو رہی ہے کہ دیکھو ہے کسی کا بیٹا ایسا جو اتنے اونچے پد کے اوپر براجمان ہے. تو کہہ رہے ہیں بابا منیہ رامنت کرشنم چ پراپت ہوئی تو سہوک تمم، بول میں تو یہی مان رہا ہوں کہ رام اور کرشن یہ کوئی دیوتا ہی میرے یہاں پر اتپن ہوئے. یہ بات بڑے دیوتا کے دوارا میں نے پوجت دیکھا کرشن کو، یہی بات میں نے اندر کے دوارا پوجت ہوتے سمے دیکھی، برہمادک دیوتا بھی میرے بیٹا کی پوجا کرتے ہوئے براجمان ہوتے ہیں. ہمارا بیٹا ایسا دیویہ ہو کر کے براجمان. اب یہاں پر جو ایشوریہ گیان ہے وہ ایشوریہ گیان ویراہ میں باتسلیہ بھاو کا ایک سنچاری بھاو ہو کر کے وہ ایشوریہ گیان آیا ہے. یہ جو شانت بھکتی کا جو گن ہے، کرشن کا پرماتما روپ میں جو درشن، شانت بھکتی کا لکشن ہے پرنتو یہ پرماتما روپ میں جو درشن ہے، یہ باتسلیہ بھاو کا سنچاری بھاو ہو کر کے ہی بابا کے ہرے میں براجمان ہے، اس کے دوارا پشت ہو رہا ہے باتسلیہ بھاو. دیکھو برہما کے کہنے پر گرگا سے سب لوگ کہتے ہیں کہ برہما کے کہنے سے نارائن کبھی کبھی اوترت ہوتے ہیں، نارائن نے میرے بیٹا کے دوارا جگت میں دشٹوں کا سنہار کروایا. بابا کے ہرے میں بھاونا کیا ہے کہ میرا بیٹا تو میرا ہی ہے، نارائن کے مہما کا کوئی ٹھکانا نہیں، نارائن اپنی مہما سے میرے پتر میں ایسی سامرتھ استھاپت کر دیتے ہیں جس سے وہ ایسے ادبھت ادبھت کاریہ کر لیتا ہے. اب نارائن کے لیے کون سی بڑی بات ہے، منہ کم کرو کہ بادشاہ عالم پگوم لگ گئے تھے گرم، میرے دگدھ مکھ بالک کے دوارا یدی نارائن کو اصل سنہار کرانا ہے اور نارائن اصل سنہار کرا لے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے بیٹا نے اصلوں کو نہیں مارا، نارائن نے میرے بیٹا میں اوستھت ہو کر کے شکتی کی استھاپنا کر کے اصلوں کا سنہار کر دیا. بابا یہی مانتے ہیں. یہ تو ہم رسکوں کی بات الگ ہے، یہ تو شری نارائن کو کرشن کا اوتار مانیں گے، کرشن کو اوتاری مانیں گے، پان تو جہاں جگت کی بات ہے جگت میں تو لکشمی اور نارائن یہی دو سب سے بڑے. تو بابا تو یہی مانے کہ نارائن نے میرے پتر کے مادھیم سے ایسے ادبھت ادبھت کاریہ کرا دیے, میرے بیٹا میں انہوں نے نہ اپنے شریر کے گڑوں کی استھاپنا کر دی اور میں بھی ایک نارائن کا سیوک ہوں اور میرے سارا یہ جو جگت ہے میرے جو پتر پوتر آدھک یہ بھی پتر آدھے یہ بھی سب نارائن کی کرپا کے دوارا ہی مجھے پراپت ہوئے ہیں. بابا کرشن کو ایشور کر کے نہیں مانتے انیتھا کیا کرشن کی یہ سامرتھ تھی کہ وہ کنسم ناگایوتم ناگایوتم پرانم کنس سری کا ویکتی جس میں 10,000 ہاتھیوں کا بل براجمان اس کنس کو مار دے, بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار دے, کولیا پیڑ کو بڑے بڑے ملوں کو اس نے مار دیا, یہ کرشن کی سامرتھ نہیں تھی. بابا تو وچار کرنے لگے, بولے کنہیا نے اتنے اونچے اونچے دشتوں کا بدھ کیا ہے. تو بڑے دھیری کے دوارا کچھ کھڑ کے لیے ایشوریہ وویک کے دوارا اپنے پتر کی مہما کا سمرن کرنے کے لیے برہ کو شانت کرنے کے لیے براجمان ہوئے, پرنتو ایشوریہ وویک آنے پر بابا کا برہ الٹا شمت نہیں ہوا, الٹا اور زیادہ بڑھ گیا ہے. من میں وچار کر رہے ہیں, بولے ہائے کہاں کہاں تک ہماری کرشن نے رکشا کی اس کا وچار کیا جائے. بابا تھوڑے سے دھیروان تھے اس لیے دھیرے دھارن کر کے سو بھی بیٹھے, یشودا جی تو بالکل بھی دھیرے دھارن نہیں کر پائی. شری سکھدیو جی ورنن کر رہے ہیں کہ یشودا ورن مانا پتان شنوت شونیہ وسطاخی اسنےہ سمت پیو دھارا. یشودا ورن مانا پتہ چرتان سے شری یشودا جی با کرشن کے چرتروں کو شرون کر کے ویاکل ہو رہی. بابا تمام ورنن کرتے رہے کہ اس نے دیکھو تال وکشوں کو نشٹ کر دیا, بھیمکاسر جو ہے اس کو رام کرشن انہوں نے سماپت کر دیا, اس نے 3 سال کے برابر لمبے جو دھنش تھا اس دھنش کو بھی اس نے توڑ دیا, اس نے 7 دن پریت گوردھن کو اپنے شری ہست کے اوپر دھارن کیا, اس نے پرلمباسر کا بدھ کیا, اس نے ارشت پرناورت کا بدھ کیا, اس نے بکاسر کا بدھ کیا. ایسی ادبھت لیلا کر رہے ہیں. بابا تھوڑی سی دھیرے دھارن کر کے کہیں اپنے من کی بات کہہ بھی دیتے ہیں, پرنتو یشودا جی نہیں کہہ پاتی. یشودا کے نیتروں سے تو نرنتر اشودھارا پرواہت ہو رہی ہے. اسنے کے کارن شری یشودا کے تنوں سے دودھ کی دھارا پرواہت ہوتی ہوئی چلی جاتی. اسنے سمت پیو دھارا شری یشودا کے پریم کی ہی یہ وشیشتا ہے کہ وہاں پر اسنے میں دودھ تنوں سے پچکاری کی طرح سے کہیں پرواہت ہو جائے. یہ کسی دوسرے کے دوسری ماؤں میں ایسی سامرتھ ودیمان نہیں ہے. اسنے سمت پیو دھارا اس سمے یشودا جو ہیں وہ اسنے میں جن کا تنوں سے دودھ کی دھارا پرواہت ہو رہی ہے, یشودا باس مون ہو کر کے براجمان ہیں, کچھ بول نہیں پا رہی ہیں. کیونکہ بولنا ہوتا ہے تب جبکہ کہیں شبد اپنے پاس میں ہو, جب شبد اپنے پاس میں ہو نہ ہو تو پھر بول سکنے کی سامرتھ کی پراپتی نہیں. تیو استھم بھگوتی کرشن نند یشودیو دیکشان راگم پرمم نند ماہودھو مدا. اس پرکار نند یشودا کے اپور روپ سے برہ میں ویاکل ہونے پر ان کے انگراگ کا درشن کر کے شری ادھو جی پر رہا نہیں گیا اور ادھو جی نند یشودا ان دونوں کو دھیرے دیتے ہوئے بولے کہ یوام شلاگ تمو نونم. بولے آہا آپ پرم پرم دھنیوان بھاگیوان ہو کر کے براجمان ہیں, آج میرے بھاگیہ کا کوئی ٹھکانا نہیں. श्री कृष्ण ने मुझे यहां भेजा, मैं तो देवकी बसदेव के भाग्य का दर्शन करके ही आनंदित हो रहा था कि आज देवकी बसदेव का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके ऐसे भाग्य, जिनकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा पर हारे और उन्होंने कंस का वध किया, देवकी बसदेव से कैसे मधुर वचनों को कहकर के उनको श्री कृष्ण धैर्य प्रदान कर रहे हैं। देवकी बसदेव बड़े भाग्यशाली हैं, अपने हाथ से देवकी बसदेव को कंस के कारागार से मुक्त करके श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले हे पिता, हे माता, हमको आपके पास में आने में बड़ा विलंब हुआ, आप हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। जिस पुत्र को माता पिता के अनुग्रह के द्वारा देह प्राप्त हुआ और वह पुत्र यदि पिता की सेवा न करे, माता की सेवा न करे, तो वह सबसे बड़ा अपराधी है। सर्वार्थ साधको देहो जनतक पोषितो यतः, जिन माता पिता की कृपा से यह देह प्राप्त हुआ, जिस देह के द्वारा हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, भक्ति ज्ञान सब कुछ इस देह के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा, तो सर्वार्थ साधको देह जनतः, संपूर्ण अर्थों को प्राप्त कराने वाला देह जिन माता पिता ने प्राप्त की, प्राप्त कराया, और उस देह को प्राप्त करके समर्थ होने पर भी जो पुत्र अपने पिता को वृत्ति प्रदान न करे, माता को वृत्ति प्रदान न करे, वह वास्तव में अपराधी है। जिस समय वह मरता है उस समय जनधन राज के लोक में उसको जाना पड़ता है, और स्वमांसम खादयन्ति ही, श्री कृष्ण के वचन है, उसे अपना मांस ही खाने को मिलता है। ऐसे मधुर वचन कहकर के श्री कृष्ण देवकी बसदेव को धैर्य प्रदान कर रहे हैं, मैंने तो मथुरा में देवकी बसदेव के सौभाग्य का दर्शन करा किया और ये विचार किया कि आहा, देवकी बसदेव का जैसा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य और किसी दूसरे का नहीं हो सकता। आपने जैसे वचन देवकी बसदेव से कहे, वैसे अदिति कश्यप से भी नहीं कहे। अदिति कश्यप के यहां पर भी आप उत्पन्न हुए वामन रूप में, परंतु उनकी अपेक्षा देवकी बसदेव का भाग्य अधिक है। अदिति कश्यप की सेवा करते हुए कभी भी विद्यमान नहीं हुए श्री वामन भगवान, परंतु यहां पर देवकी बसदेव की साक्षात सेवा करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं, पिता के चरणों की वंदना कर रहे हैं, मां के चरणों की वंदना कर रहे हैं। परंतु जब मैं ब्रज आया हूं, श्री कृष्ण ने कृपा करके मुझको ब्रज भेजा, तब जाकर के मुझे पता लगा कि अहो युवाम श्राग्य तमो नूनम देह नाम ए मानदा, कि आपका जैसा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य किसी दूसरे का हो नहीं सकता है। नारायण खिलगरव यत्कता मति विदृशी, आपने नारायण में ऐसी बुद्धि कर रखी है, उस सौभाग्य का, उस प्रेम का क्या वर्णन किया जाए, जिस प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान को भी आप एक ओर रख करके सहज स्वाभाविक भाव के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण यद्यपि नारायण है, परंतु आप कृष्ण को नारायण करके नहीं मान रहे हैं, आप कृष्ण को अपना पुत्र करके ही मान रहे हैं, और आपकी उन नारायण में ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति लग गई। वस्तु स्वभाव तो कृपा करेगा ही, आपने यद्यपि नारायण रूप में उनकी आराधना नहीं की है, पुत्र रूप में आराधना की है, परंतु आखिर में है तो वे नारायण ही, जिनकी आप ऐसी प्रीति पूर्वक सेवा कर रहे हैं। तो आप परम परम भाग्यशाली हैं, देवकी की अपेक्षा श्री यशोदा का जो सौभाग्य, वो यशोदा का सौभाग्य अद्भुत, अदिति कश्यप की अपेक्षा देवकी बसदेव का सौभाग्य अधिक, और देवकी बसदेव के सौभाग्य की अपेक्षा श्री यशोदा नंद का जो सौभाग्य है वह तो अतिशय अधिक है। क्योंकि जहां लालन पालन करते हुए अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं, जहां अनुशासन करते हुए श्री देवकी बसदेव की अपेक्षा नंद यशोदा का सौभाग्य अपने आप प्रकट हो रहा है, अतः श्री सुखदेव जी यशोदा जी की महिमा का गायन करते हुए स्वयं ही कहने लगते हैं कि आहा, नायम सुखापो भगवान देह नाम ज्ञान नाम गोपिका सुतः, ज्ञान नाम चातुर्भूतानाम यथा भक्त मताम, यह नायम सुखापो भगवान देह नाम, अन्य जो देहधारी हैं उनको कृष्ण इस प्रकार सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, ज्ञान नाम जो ज्ञानी जन है उनको भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ, यथा भक्त मताम यह जैसे इस वृंदावन में, इस ब्रज में भक्तगणों को आपने जैसा सुख प्रदान किया, वैसा सुख आप किसी दूसरे को नहीं देते। नायम सुखापा कहकर के श्री कृष्ण सुखपूर्वक प्राप्त नहीं है, अथा सुख साध्य नहीं है, सुख प्रदाता नहीं है और सुख रूप भी नहीं। नंद यशोदा को जैसा सुख की प्राप्ति हुई, ऐसी सुखरूपता कृष्ण को सुखरूप में किसी दूसरे ने नहीं पाया। नंद यशोदा को जैसे सरलता से परिपूर्ण रूप से प्राप्त हुए, ऐसे किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हुए। और जैसा सुख नंद यशोदा को प्रदान कर रहे हैं, ऐसा सुख भी किसी दूसरे को प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो यशोदा में का जो सौभाग्य है, श्री यशोदा जी का सौभाग्य, वो सौभाग्य कोई दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता है। जिनकी महिमा का गायन करने के लिए सर्वदा सर्वदा अनेक अनेक जगह महिमा का गायन किया गया, वर्णन किया गया कि श्री यशोदा में जो सौभाग्य विद्यमान है, वैसा सौभाग्य ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ, वैसा सौभाग्य शिव जी को प्राप्त नहीं हुआ, वैसा सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ। नैवम विरंच लभते प्रसादम न श्री न सर्व कि मुता परी से। नैवम विरंच लभते प्रसादम, जैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री यशोदा को, ऐसा नैवम विरंच न भवो न श्री अप्यंग संश्रया प्रसादम लेवरे गोपी यत्त प्राप विमुक्त दास। गोपी श्री यशोदा ने जैसे सौभाग्य को प्राप्त किया, वैसा सौभाग्य किसी दूसरे को नहीं मिला नहीं है। ब्रह्मा भले आपके पुत्र हैं, परंतु ब्रह्मा को ये प्रेम वश्यता प्राप्त नहीं हुई। शिव जी भले आपके मित्र हैं, आपसे अभिन्न स्वरूप ही हैं, अवतार ही हैं, परंतु शिव को वह प्रेम वश्यता की प्राप्ति नहीं हुई। यशोदा जैसे कृष्ण को बांध रही है, ऐसे प्रेमवश होकर के न तो कृष्ण किसी दूसरे से बंधे, न किसी में ये सामर्थ्य कि वो कृष्ण को बांध सके। और लक्ष्मी जी यद्यप आपके वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है, परंतु लक्ष्मी की भी ये सामर्थ्य नहीं कि वे श्री कृष्ण को बांध लें, नारायण को बांध लें। वे सेवा करती हुई विराजमान हो रही है, परंतु श्री ब्रज गोपिकागणों की विशेषता, श्री यशोदा जी की विशेषता कि वे श्री कृष्ण को प्रेम की डोरी से बांध रही है। तो प्रसादम लेधरे गोपी, किसी दूसरे को ये कृपा भी नहीं मिली। सुखदेव जी तो प्रसाद शब्द का प्रयोग करने में भी संकोच कर रहे हैं दामोदर लीला के प्रसंग में, और वहां पर कह रहे हैं यद तक, इसको प्रसाद भी कैसे कहा जाए, कोई अद्भुत वस्तु। यहां पर तो उल्टी बात हो रही है, उल्टी यशोदा कृष्ण के ऊपर कृपा करेंगी, कृष्ण यशोदा के ऊपर कृपा नहीं करेंगे। प्रसाद करने वाले, कृपा करने वाले तो यशोदा है, कृष्ण नहीं है। तो प्रसाद शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए सुखदेव जी कोई शब्द मिला नहीं, इसलिए यत्त शब्द का प्रयोग करने लगे कि कोई जो अपूर्व वस्तु, जिसको क्या कहा जाए, जो यशोदा को प्राप्त है, ऐसी वस्तु और किसी दूसरे को प्राप्त हो ही नहीं सकती है। श्री यशोदा के सौभाग्य का क्या निरूपण किया जाए, श्री नंद बाबा के सौभाग्य का क्या निरूपण किया जाए, जिन्होंने अपने पुत्र को गोदी में विराजमान करके उनका नामकरण संस्कार कर रहे हैं, उनका लालन कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनका उनके प्रति स्नेह प्रकट करते हुए विद्यमान हो रहे हैं, लालन पालन संस्कार करते हुए भी विराजमान है। तो युवाम श्लाघ्य तमो नून, आप श्लाघ्य नहीं, श्लाघ्य तर नहीं, श्लाघ्य तम होकर के विराजमान। अन्य लोगों को आहा सम्मान प्रदान करने वाले आप ही हैं, आपके सौभाग्य का मान द। नंद बाबा से विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप सम्मान प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि बाबा गंभीर होने के कारण कुशल प्रश्न भी कर रहे हैं। बाबा गंभीर होने के कारण उद्धव पधारे तो स्वागत प्रश्न भी कर रहे हैं, कहीं उद्धव के भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके सुख निवास की व्यवस्था भी कर रहे हैं, परंतु यशोदा जी को तो ये भी होश नहीं है। तो मानवा कहकर के आप सबको सम्मान प्रदान करने वाले हैं, तुम्हारी नारायण में ऐसी प्रीति लगी हुई है, आपके सौभाग्य का क्या निरूपण किया जाए। मन में विचार किया उद्धव जी ने कि इस समय नंद बाबा के हृदय में कृष्ण के ऐश्वर्य की स्फूर्ति हो रही है, इसलिए चलो ऐश्वर्य का प्रसंग उपस्थित हो गया है, ऐश्वर्य का वर्णन करके ही बाबा के विरह को शांत कर दूं। क्योंकि तो बाबा के मुख से पहले निकल गया था कि मन ने कृष्णम च रामम च प्राप्त हुई है सुरोत्तम, कि राम कृष्ण कोई देवता ही होकर के मेरे यहां पर उत्पन्न हुए हैं। तो मन ने विचार किया कि जो प्रसंग उत्पन्न हुआ है उसी प्रसंग को पकड़ करके कहीं बाबा के विरह को मैं शांत कर दूं। तो श्री उद्धव जी कृष्ण के ऐश्वर्य का ही वर्णन करने लगे कि बाबा एक हुई विश्व सचे बीज योनि। बोले बाबा तुम्हारे दोनों जो पुत्र हैं रामकृष्ण, ये ही सारे विश्व के आद कारण होकर के विराजमान है। श्री कृष्ण ही जगत के अभिन्न निमित्त उपादान होकर के विराजमान है। वे केवल निमित्त मार्ग कारण ही नहीं है, वे उपादान कारण भी होकर के वे ही विराजमान है। श्री वेदांत दर्शन विशेष रूप से श्री कृष्ण को अभिन्न निमित्तोपादान स्थापित करता है। जहां पर ईश्वर को ही अभिन्न निमित्तोपादान माना जाए उसी का नाम है वेदांत। सभी धर्म अन्य जितने भी विश्व के धर्म हैं वे ईश्वर को निमित्त कारण को मानते हैं पर ईश्वर को उपादान कारण नहीं मानते। ईश्वर जगत की रचना करने वाला है यह तो सब कहते हैं, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, इस्लाम भी कहता है, अन्य जितने भी धर्म हैं वे भी ये कहते हैं कि ईश्वर जगत की रचना करने वाला है, परंतु ईश्वर ही जगत के रूप में परिणत है ये कहने वाला कोई नहीं है। ये कहने वाला वेदांति ही है कि वह मकड़ी भी वही है, जाल भी वही है, और मकड़ी के ही लार जो निकल रही है जाल बनाने वाली वह भी वही है, मशीन भी वही है, मैकेनिक भी वही है, और मैटर भी वही है, तीनों चीज वही है, एक ही होकर के विराजमान, ये कहने वाला वेदांत दर्शन ही है। और जहां पर ईश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान माना जाए वह मत ही वेदांत मत होकर के वेद का परम परम सार रूप होकर के स्थापित हो सकता है। सांख्य ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानता है परंतु उपादान कारण नहीं मानता है, उपादान कारण प्रकृति है, माया के द्वारा देखने पर प्रकृति जो है वो उसमें विकार उत्पन्न होता है और प्रकृति जगत की सृष्टि कर रही है। परंतु वेदांत दर्शन में प्रकृति कोई अलग वस्तु नहीं है, वह ईश्वर का ही स्वरूप होकर के ईश्वर की ही एक शक्ति होकर के विराजमान। तो एतहु विश्वस्य बीज योनि, जगत की बीज और योनि उपादान और निमित्त ये दोनों श्री हरि ही एकमात्र विराजमान है, जो निमित्त कारण भी है साथ के साथ में उपादान कारण होकर के भी विराजमान। वे ही पुरुष हैं, वे ही प्रकृति होकर के विराजमान, क्योंकि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में वे बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत रूप में अपने आप को परिणत करते हुए विराजमान होती हैं। इस प्रकार शक्ति परिणामवाद के रूप में विक्षेप नहीं बल्कि शक्ति परिणाम के रूप में उन्होंने अपने आप को जगत के रूप में परिणत किया है। अन्य भूतेश विलक्षण वे संपूर्ण पदार्थों में अन्वित होकर के विराजमान हैं, अर्थात वे ही संपूर्ण जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनके रूप में अपने आप को परिणत कर रहे हैं। भगवान के तीन शक्तियां हैं, एक शक्ति है स्वरूप शक्ति, एक शक्ति है तपस्या शक्ति, और एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति। जहां पर भगवान और शक्ति जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, शक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है, शक्ति कोई गुण नहीं है बल्कि भगवान का स्वरूप ही है। श्री सर्व संवादनी में जीव गोस्वामी जी अनुभव करते हैं कि स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्देनाभिधीयते, कार्य स्वरूप की ही कार्योन्मुख जो अवस्था है उसी का नाम शक्ति है। स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्देनाभिधीयते, तो भगवान जहां पर अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा नाम धाम लीला परकर इनको प्रकट कर रहे हैं वह उनकी स्वरूप शक्ति का परिणाम है। श्रीमद वृंदावन उनकी स्वरूप शक्ति है, लादनी संदनी समृत ये तीनों श्री प्रभु की स्वरूप शक्ति है, सिद्ध शक्ति है, और इस सिद्ध शक्ति के द्वारा श्री भगवान अपनी लीला को सदा से प्रकट किए हुए विराजमान हो रहे हैं। भगवान की दूसरी शक्ति है वो है माया शक्ति जो बहिरंगा है, और उस त्रिगुणात्मक माया के द्वारा आपने अपने आप को जगत रूप में परिणत किया। ये शक्ति परिणाम है, स्वरूप परिणाम नहीं है। शक्ति परिणाम होने पर शक्ति के जगत के जो दोष हैं वे दोष भगवान को नहीं लगेंगे। यह स्वरूप का परिणाम होगा तो जगत के जितने भी दोष हैं वे दोष सुख दुख मोह रूपता ये सारे दोष भगवान में आ जाएंगे। परंतु अपनी माया शक्ति के द्वारा वे अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं, अतः माया के दोष त्रिगुणों के दोष भगवान को नहीं लगते। परंतु माया अलग से शक्ति नहीं है, कोई पृथक शक्ति नहीं है, वह भी भगवान की ही एक शक्ति होकर के विराजमान है। और इन दोनों के बीच में एक तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति है जीव शक्ति, जो तटस्था होकर के विराजमान यदि स्वरूप शक्ति में अवस्थित हो जाए, परकर के बीच में अवस्थित हो जाए, तो वह लीला परकर होकर के श्री युवा सरकार की श्रीमद वृंदावन में सेवा करते हुए विराजमान हो जाए। और जब तक भगवान की कृपा शक्ति उसे नहीं मिली, यदि वो बाहर पड़ा हुआ है, माया में ही पड़ा हुआ है, तो माया में पड़ा होकर के वह बंधन को भी प्राप्त करते हुए विराजमान हो जाए। तो इस प्रकार जीव रूप तृतीय शक्ति होकर के विराजमान, और उसमें ये कभी माया में विराजमान होकर के अपने आप को मायक रूप में अनुभव कर रहा है, और कभी स्वरूप शक्ति के द्वारा जब इसे चिन्मय देह आदि की प्राप्ति हो जाए, उनके द्वारा ये सेवा करते हुए भगवान की सेवा सुख का प्रेम सेवा का भी आस्वाद प्राप्त करते हुए विराजमान होता है। श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि अन्वी भूतेशु विलक्षण स्यो, श्री प्रभु इस प्रकार शक्ति परिणाम के रूप में अपने आप को पंच महाभूतों में अन्वित होकर के अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, और विलक्षण स्यो स्वरूप शक्ति के रूप में आप अलग होकर के भी विराजमान। जैसे पंच महाभूत सबके भीतर विद्यमान भी हैं और सबसे अलग भी दिख रहे हैं, ऐसे ही श्री प्रभु बहिरंगा शक्ति के रूप में भी विद्यमान है, तटस्था शक्ति के रूप में भी आप विराजमान है, क्योंकि बिनाच्युता वस्तु परम वाच्यम, उन हरि के बिना कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। आगे उद्धव जी निरूपण करेंगे, इसी वेदांत का प्रतिपादन करेंगे कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, सब वस्तु श्री कृष्णमय होकर के ही विराजमान है, कृष्ण ही ब्रह्म होकर के विराजमान है। तो जहां पर सब कुछ कृष्ण होकर के विराजमान है, वहां पर स्वरूप शक्ति में वे अलग स्वरूप शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हुए वे अलग होकर के भी विद्यमान है। तो वो अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्तु, सब में विद्यमान भी है और सबसे अलग होकर के भी विराजमान है। ज्ञान से तेषात इमौ पुराणौ, वे ज्ञान रूप होकर के विराजमान है और वे ही शासक होकर के विराजमान, ईश होकर के वे ही विराजमान है। माया और जीव इन दोनों के, ज्ञान से माने ज्ञान रूप जो जीव है, उस जीव तत्व के भी वे स्वामी होकर के विराजमान है और वे माया के भी स्वामी होकर के विराजमान है। जीव और ईश्वर में सच्चिदानंद रूपता विद्यमान है, जीव ईश्वर का ही अंश है और सच्चिदानंद है, परंतु अंश होने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी ने छेनी हथौड़ी लेकर के जैसे किसी मिश्री के पहाड़ में से कोई टुकड़ा निकाल करके अलग कर दिया हो, ऐसे जीव ईश्वर से अलग होकर के विद्यमान हो, तो बात नहीं है। वह ईश्वर में ही, ईश्वर का आश्रय लेकर के ही सर्वदा सर्वदा अवस्थित है, जैसे सूर्य की किरण सूर्य का आश्रय लेकर के ही विराजमान है, वह सूर्य से अत्यंत अत्यंत उच्छिन्न नहीं। अतः जगत भी भगवान में ही है, जीव भी भगवान में ही है। आश्रय पदार्थ यदि कोई है तो वे आश्रय पदार्थ श्री हरि ही है। आयासस्य निरोधस्य यतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परब्रह्म, جس میں ہی سرشتی ہو رہی ہے اور جس میں ہی استھتی ہے, جس میں ہی پرلے کی پراپتی ہو جائے گی, وہ آسر پدارتھ ہے. تو شری ادھو جی نند بابا سے کہہ رہے ہیں, بولے بابا آپ پرم پرم دھنیہ ہیں جن کی نارائن میں ایسی پریتی لگی ہوئی, آپ جن کو اپنا پتر کہہ کے سمجھ رہے ہیں, وہ شری کرشن ساکشات جگت کے آشرے ہو کر کے براجمان, وہ ان میں ہی جیو اوستھت ہو کر کے براجمان, ان میں ہی جگت بھی اوستھت ہو کر کے براجمان, جگت اور جیو ان کے ہی کیول شکتی سوروپ ہو کر کے براجمان ہے. جان سے کیشات جیو کے بھی وہ سوامی ہے. اب جیو اور ایشور دونوں یدیپی سچیدانند ہے, پرنت جیو سدا کرشن داس ہو کر کے ہی براجمان ہے, ایشور سدا شاسک ہو کر کے ہی براجمان ہے. ان میں شاسک کا بھید سرودا سرودا بنا ہی ہوا. سچیدانند ہونے پر بھی جیو جگت کی رچنا نہیں کر سکتا, جبکہ ایشور جگت کا رچناکار ہو کر کے براجمان. سچیدانند ہونے پر بھی جیو سوئم سوامی نہیں ہے, وہ مایا سے آبرت ہو سکتا ہے, پرنتو مایا سے کہیں نہ کہیں پربھاوت ہو سکتا ہے اور پربھاوت ہو کر کے کہیں بندھن کو وہ پراپت کر سکتا ہے, پرنتو ایشور مایا سے سروتھا اسمپرست ہو کر کے ہی براجمان ہے, مایا کا شاسک ہو کر کے ہی براجمان ہے. اتہ جان سے کیشات وہ جان روپ جیو کا بھی سوامی ہو کر کے براجمان ہے. امو پراڑوں رام کرشن یہ دونوں پراڑ پروش ہیں, ان کا کوئی کارن نہیں ہے, یہ سب کے کارن ہے. کیونکہ تتو شبد کی ویاخیا ہی یہ ہے کہ جو سوئم سدھ بھید شونیہ پدارتھ ہو اس کو ہی تتو کہا جاتا ہے. تو پراڑ کہنے کا تاتپریہ ہے وہ سب کے کارن ہے, وہ سوئم سدھ ہیں, ان کو سدھ کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑی. جگت کی ساری وستوں کو بنانے کے لیے کسی اپادان کی ضرورت پڑتی ہے, پرنتو ایشور کو بنانے کے لیے کسی اپادان کی ضرورت نہیں ہے, وہ سوئم سدھ ہے. گھڑا بنانا ہے تو مٹی لینی پڑے گی, وستر بنانا ہے تو سوت لینا پڑے گا, کاری کے لیے کارن کی آوشیکتا ہوگی, پرنتو ایشور کا کوئی بھی کارن نہیں ہے. امو پراڑ یہ دونوں کے دونوں آد پراڑ سب کارن ہو کر کے براجمان. تو ایک ہوئی وشوست کی بیجیونی رامو مکند پورش پردھانم انوی بھوتےش ولکشنسو جانست کیشات امو پراڑ یسمن جن پراڑ ویوگ کالے کھن سماوش منو وشدم نرت کرماشے ماشیاتی پرام گتم برہم میوک وہنا. شری ادھو جی آگے بولے, بولے بابا یسمن جن پراڑ ویو کالے, آپ ایسا وچار مت کرنا کہ رام کرشن ہمارے یہاں پر پتر روپ میں براجمان ہے, یہ بھی کرم کے بشیبھوت ہو کر کے جیسے جیو آیا ہے جنم گرہن کرتا ہے ایسے یہ کرم کے بشیبھوت ہو کر کے براجمان ہے, ایسا وچار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ تو وہ ہے جو کہ کرم بندھن کو الٹا دور کرتے ہیں, یہ کرم کے ادھین نہیں ہے, بلکہ یا تو کرم کے بھی ایش ہو کر کے براجمان, کرم کے بھی سوامی ہو کر کے براجمان. پراؤں کا تیاگ کرتے سمے یدی سب جگہ سے چت ہٹا کر کے ان کے چرناروند میں سمرن کر لیا جائے, ان کا نام ہی ایسا جو کہ منو وشدھم سارے دوشوں کو دور کر دیتا ہے, اور سارے دوشوں کو دور کر کے شری کرشن میں جہاں چت لگایا جائے وہاں پر نرہت کرماشے ماشے آتی, کرموں کے بندھن اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں. تب تو تہ کرم بندھن دور کرنے کا اپائے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, کرم بندھن دور کرنے کا اپائے اگر کوئی ہے تو وہ گوبند چرنوں کی دھیان, گوبند چرنوں کا نام کا سمرنی ہے. چت روپی درپن کو مارجت کر کے یدی کوئی پرم پھل کو پردان کرنے والی وستو ہے تو جن کا نام ہی پرم پھل کو پردان کرنے والا, پریم روپ پدارتھ کو پردان کرنے والا, وستو سوروپ کی پورتی کرا دینے والا ہے, تو پھر ان کا تو سوئم کا تو کہنا ہی کیا. تو نرہت کرماشے جن کا سمرن ماتر कर्म के मन के कर्म बंधनों को दूर कर रहने वाला है। यदि भक्ति को छोड़ दिया जाए और कर्म बंधन को दूर करने के लिए मन को शुद्ध करने के लिए दूसरे उपाय ग्रहण किए जाएं तो उनके द्वारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है। श्री संकादिक पृथ्वी महाराज से ऐसा सतत करने में कह रहे हैं कि चित्त को शुद्ध करने का यदि कोई उपाय है तो वो गोविंद भजनों का चरणों का भजन ही है। जैसे भजन के द्वारा चित्त शुद्ध होता है ऐसे किसी दूसरे प्रकार से चित्त शुद्ध हो नहीं सकता है। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्तिया कर्माशय ग्रसित मुद्रसंत संत तद्वन्न रिक्त मतयो मुनियो यतोपरुद्ध श्रोतो गणास्मरणम भज वासुदेव। जैसे चित्त को शुद्ध करने वाला भगवान नाम है, उनके चरणों की सेवा है, ऐसे कोई दूसरी वस्तु चित्त को शुद्ध करने वाली हो नहीं सकती है। जिन्होंने भक्ति को छोटा करके माना और दूसरे साधनों के द्वारा चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न किया तत्वतः तद्वन्न रिक्त मतयः, उनके लिए भद्रजनों की गाली दी कि मानो उनमें बुद्धि है ही नहीं, जो बुद्धि से शून्य, ये भद्रजनों की गाली। अतः तमरणम भज वासुदेवम, उन सर्व शरण रूप जिनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए उन वासुदेव का ही एकमात्र आश्रय ग्रहण करके विराजमान। तो निर्वृत्त कर्माशय माशु, जिनका स्मरण मात्र कर्माशय को दूर कर देने वाला है, और ज्ञानी भी उनके चरणों की सेवा के द्वारा ही पराम गतिम ब्रह्ममयोर कवर्ण अर्चराद मार्ग से अर्कवर्ण होकर के अर्चराद मार्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह विचार मात्र ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला नहीं है, ब्रह्म की निष्ठा ही ज्ञानी को ब्रह्म साध्य कराने वाली होती है। जैसे इदम दुखम, यह ज्ञान कभी भी दुख देने वाला नहीं होता, अहम दुखी, यह ज्ञान ही दुख देने वाला होता है। इदम दुखम, यदि यही ज्ञान दुख देने वाला होता तो कोई भी संसार में डॉक्टरी पढ़ता ही नहीं, तो डॉक्टरों को तो केवल दुखी दुख के विषय में पढ़ना पड़ता है, रोगी रोग के विषय में पढ़ना पड़ता है। परंतु इदम दुखम, यह पढ़ने पर भी, यह ज्ञान होने पर भी, जैसे कोई भी डॉक्टर दुखी नहीं होता। दुखी होता है कब? जब यह अनुभव करे कि मैं दुखी हूं, अहम रोगी, अहम दुखी, तब जाकर के उसको दुखी की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इदम ब्रह्मम कहने से ब्रह्म की निष्ठा प्राप्त नहीं होती। जब तक ज्ञानी भी उपाधि को हटा करके वस्तु में को अपनाए नहीं, वस्तु में स्वयं अवस्थित न हो, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त न करे, तब तक ज्ञानी को भी ब्रह्म साहित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस उपाधि नाश का उपाय यदि कोई है, संसार नाश का यदि कोई उपाय है, तो सर्वम खलिदम ब्रह्म ये कहने से उपाधि का नाश नहीं होगा। श्री गोविंद नाम का आश्रय ग्रहण करने पर ही भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते, यह कहने पर ही, गोविंद का आश्रय लेने पर ही उसकी उपाधि का नाश होगा। तो ज्ञान के लिए भी भक्ति की अनिवार्यता है, बिना भक्ति के ज्ञानी को भी ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञानी को भी भगवत स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, उसे संकल्प समाधि भी लगानी पड़ती है, उसे नाम का आश्रय भी ग्रहण करना पड़ता है, और उसे भक्ति ग्रंथों का श्रीमद् भागवत आदि का आश्रय, भक्ति का आश्रय लेकर के भी विराजमान होना पड़ता है, तब जाकर के उसकी उपाधि का खंडन होता है। तो उपाधि दूर करने के लिए, तत्व को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। तो पराम गतिम ब्रह्म मयोर कवर्ण, जो अर्चनाद मार्ग से ब्रह्म साहित्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, वे भी श्री कृष्ण में ही चित्त लगा करके उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा, आपके जो पुत्र हैं वो सामान्य नहीं है, आपके पुत्र तो साक्षात ब्रह्म है, और उन ब्रह्म में आपने ऐसी प्रीति लगा रखी है, आप सभी का भाग्यशाली और कौन हो। ऐसे तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायणे कारण मर्त्य मूर्तौ भावम विधत्ताम नित राम महात्मन। उन श्री कृष्ण में आप अपने भाव को लगाओ, कृष्ण में आपकी प्रीति लगी है तो फिर आपको बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपके लिए कोई भी वस्तु अभी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वस्तु शक्ति तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालेगी। वस्तु शक्ति जो है वह प्रभाव डालेगी। कृष्ण चिन्मय है, कृष्ण ब्रह्म है, और यदि कृष्ण का आराधन किया जाएगा तो संसार बंधन की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। कृष्ण की प्रीति करने पर संसार बंधन की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। बुलवा कहा तो यह भी जा सकता है कि जब सर्वम खलु इदम् ब्रह्म है तो पत्नी से पुत्र से जो प्रेम किया जा रहा है वो क्या ब्रह्म से प्रेम नहीं किया जा रहा है क्या? प्रश्न तो उपस्थित किया ही जा सकता है कि जब सभी ब्रह्म है, श्री प्रभु ही अपने आप को सब रूप में प्रकट कर रहे हैं, तो जगत से जो प्रीति की जा रही है वह भी तो कहीं ना कहीं भगवान से ही प्रीति हुई। बोले ठीक है, कहीं सिद्धांत में जाकर के भगवान से प्रीति होगी, परंतु वह स्वरूप से प्रीति नहीं है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से ही वह प्रीति है। जब तक स्वरूप शक्ति से प्रीति नहीं होगी तब तक भगवत शरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जगत है परंतु जगत यद्यपि ब्रह्म है, सर्वम खलिदम् ब्रह्म हो, परंतु जगत परिणाम है भगवान की तुलनात्मिका शक्ति का, परंतु वृंदावन की रज से जो प्रीति की जाएगी वृंदावन की रज तुलनात्मिका शक्ति का परिणाम नहीं, ये स्वरूप शक्ति का परिणाम है। यही अंतर। पत्नी और पुत्र ये माया शक्ति के परिणाम है, परंतु श्री कृष्ण कृष्ण परिकर कृष्ण